21 मई को चुनाव होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं और हमारे भारतीय मूल के समुदाय में लोगों के लिए कई ऐसे मुद्दे हैं जो उन पर प्रभाव डालते हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, हेल्थ हो, माइग्रेशन प्रोग्राम हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग हो या पेरेंट वीजा। अब फेडरल चुनाव आम तौर पर हर 3 साल में एक बार होता है और इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सदस्यों और आधे सेनेट को चुना जाना होता है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में 151 डिवीजन हैं, जहां से एक सदस्य चुना जाएगा और फिर सरकार बनेगी। तो मतदान के समय व्यक्तिगत उम्मीदवार या पार्टी या उन्हें प्रभावित करने वाली क्या नीतियां हैं, इन सब पर बात की अपने कुछ श्रोताओं के साथ। कैनबरा से दरबारी जी के लिए कुछ अहम मुद्दे हैं।
इस इलेक्शन में जो मेजर कंसर्न मुझे है, फोर्थ हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी मेरे लिए एक मेजर कंसर्न है। मुझे लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस इशू को रिजोल्व करने के लिए वर्क नहीं कर रही है। यहाँ की जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है, जैसे नेगेटिव गियरिंग, उसकी वजह से हाउस प्राइसेस एवरी ईयर दे जस्ट पुशिंग अप, ऑलमोस्ट 30% हाउस प्राइसेस में राइज आया। तो मुझे ये पर्सनली लगता है कि जो हाउसिंग है, इट शुड बी फॉर दोज पीपल हु नीड ए हाउस, जिनको एक शेल्टर चाहिए। बट इस देश के अंदर मुझे लग रहा है कि हाउसिंग तो एक कमोडिटी बन चुकी है टू स्पेकुलेट ऑन, टू क्रिएट वेल्थ। तो ऐसी पॉलिसी से मुझे लगता है कि मतलब बहुत हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है या एग्जिस्टिंग बहुत सारे यंग लोग हैं जो कभी घर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये चाहूंगा, अभी इलेक्शन हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपनी उस पार्टी को वोट करें जो हम सब के जो कंसर्न्स हैं उनको समझती है और उसके लिए कुछ वर्क करेगी। तो आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू 21st कि हम अपना वोट डालेंगे और अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे।
जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हम सब अनजान तो नहीं हैं। यूं देखें तो दोनों प्रमुख दलों ने इस दिशा में परियोजनाओं का समर्थन करना जारी रखा है, लेकिन चिंता तो ये है ही कि समय निकलता जा रहा है, ठोस कदम उठाने होंगे और यही हमारे श्रोता हरदेव गोपलानी के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है।
मैं इस इलेक्शन में चाहता हूँ कि क्लाइमेट चेंज को इम्पोर्टेंस दिया जाए। अगर आपने क्लाइमेट चेंज को नहीं देखा अभी, तो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है, इन लोगों को बहुत बहुत प्रॉब्लम होने लगेगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कितना वेदर में, टेम्परेचर में कितना बदलाव आ रहा है, और ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया इन्होंने तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उन लोग तो खैर निकल जाएंगे, लेकिन फ्यूचर जनरेशन को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी।
इसके अलावा भी उनके लिए कुछ और मुद्दे हैं।
और कई लोग जो है, पर्टिकुलरली माइग्रेंट, उनके जॉब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाए। तीसरी बात, मैं चाहता हूँ कि ये जो सीनियर सिटीजन लोग हैं ना, जिन्होंने बहुत काम किया है कंट्री के लिए, उनका भी पूरा पूरा ख्याल रखा जाए, ताकि यू नो दे लिव थर्ड फेज ऑफ देयर लाइफ मोर कम्फर्टेबली, हैप्पीली। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी पार्टी आए वो ये सब मुद्दों पे थोड़ा ध्यान दे, और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है हाई होते जा रही है।
भारतीय समुदाय में पेरेंट वीजा का विषय प्रमुख बना हुआ है, फैमिली बैलेंस का मापदंड प्रभावित कर रहा है। उसी के लिए हमारी श्रोता वीरपाल जी का कहना है।
मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स के वीजा के लिए ये जो फैमिली बैलेंस वाली चीज है वो नहीं होनी चाहिए, जैसे कनाडा में है, अमेरिका में है, पेरेंट्स को पीआर दिलवाने के लिए एक बच्चा भी काफी है। तो क्योंकि मैं सिंगल मम हूँ तो मुझे मतलब मेरी माँ की सपोर्ट चाहिए, तो मतलब मैं उनको पीआर करने के लिए जो भी फाइनेंशियली है रिक्वायरमेंट वो मैं कर सकती हूँ। ओनली द थिंग इज मेरे दो ब्रदर सिस्टर जो है वो इंडिया में है, वो मैं चाहती हूँ कि मिनिस्टर्स इस तरफ भी ध्यान दें कि हमारी जरूरतों को देख सकें, ताकि मैं काम कर सकूं। मैं एक टैक्स पेयर हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं टैक्स पेयर बनी रहूं, ना कि घर पे बैठ के सेंट्रल लिंक पे डिपेंडेंट हो जाऊं। तो उसलिए मैं चाहती थी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हमारी इस जरूरत को भी ध्यान में रखें। पर हाल फिलहाल मैंने ऐसा कोई देखा नहीं है कि पेरेंट्स वीजा को कोई ज्यादा इतना उठा रहा है, बाकी दूसरे मुद्दे ही चल रहे हैं।
तो फिर जब आप वोट देने जाएंगे, कौन से ऐसे मुद्दे और होंगे जो आपको और प्रभावित करेंगे?
मेरा सोचना देखना यही है कि अगर जैसे सिंगल मम है, मोस्टली फैमिली वायलेंस इंडियन फैमिलीज में बहुत ज्यादा है, और उनको रोकने के लिए जो पार्टी ज्यादा काम करेंगी उनको हम चाहेंगे आगे लाना। और दूसरी बात, हम ये भी चाहेंगे कि वो हमारे मतलब इमोशनल सपोर्ट को भी ध्यान दें।
आदित्य सिंघल जी, जो एक चार्टर अकाउंटेंट हैं, उनके लिए कुछ मुद्दे प्रमुख हैं, लेकिन पेरेंट वीजा और उसका मापदंड एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।
दो तीन मुद्दे हैं जो कि टॉप ऑफ द माइंड है, जिनमें कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिडनी, इनकम टैक्स बेनिफिट्स या इनकम टैक्स ब्रेक्स। सो एक इशू जो साइडलाइन हो गया है और जिस पे कि शायद मेरा वोट डिसाइड करेगा कि किसको जाएगा, वो है पेरेंट्स वीजा का मुद्दा। इसमें इम्पोर्टेंट चीजें मेरे हिसाब से ये हैं कि जो पेरेंट्स, एक तो प्रोसेसिंग टाइम फास्ट होना चाहिए कॉन्ट्रीब्यूटरी पेरेंट वीजा का खास तौर से, क्योंकि उसमें भी बहुत टाइम लग रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं लॉन्ग टर्म वीजा पे, उन्हें कम से कम 20 या 25 घंटे का वर्किंग राइट्स होने चाहिए। जो बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट है, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि ये जो कंडीशन है लॉन्ग टर्म पेरेंट वीजा के लिए, परमानेंट वीजा के लिए, ये निकाल दी जाए, क्योंकि इसका मुझे कोई सेंस नहीं लगता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर फ्यूचर एनी पार्टी शुड थिंक कि, और काफी पेरेंट्स ऐसे हैं जो यू नो अच्छी हेल्थ कंडीशन में हैं और यहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये एक इम्पोर्टेंट इशू होगा डिसाइड करने में कि मेरा वोट किसको जाएगा।
इसी तरह से हमारे श्रोता जैक जी के लिए पेरेंट वीजा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।
मेरे लिए जो इस बार इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा है वो पेरेंट वीजा है। के लिए मैं दिन रात सोचता हूँ। और जो उससे सेकंड नंबर पे मुद्दा है वो मेरे लिए यहाँ पे जो वेजेस हैं और इन्फ्लेशन है, उसका मुद्दा मेरे लिए, दो मुद्दे बहुत अहम है। इन्हीं के मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी वोटिंग करूंगा।
हमारे श्रोता मोहित जी को चुनना है उसको जो अर्थव्यवस्था के प्रति जागरूक हो, यानी जो टैक्स हम देते हैं उसका सही फायदा लोगों को मिले।
तो मेरा जो मेन जो मुझे लगता है जो इश्यू है हम वर्किंग क्लास लोगों का, कि हम लोग काम भी करते हैं और टैक्स भी पे करते हैं, और वो टैक्स पेयर मनी जो बोलते हैं तो वो उनको देते हैं जो ऑलरेडी सेंट्रलिंग से बेनिफिट लेते हैं, जो मुझे लगता है वो मुद्दा है। सेंट्रलिंग में बात करने जाओ, वट एवर हैपनिंग होती है तो सेंट्रलिंग वाले बोलते हैं नो यू नॉट एलिजिबल यू अर्निंग दिस। तो हम एक ही लाइक ऑस्ट्रेलिया के सभी इक्वल सिटीजन है, तो एक आदमी बेनिफिट ले रहा है और दूसरा आदमी बेनिफिट नहीं ले पाता है। जो भी पार्टी इस इश्यू को एड्रेस करेगी मैं तो उसी को वोट दूंगा। इसके अलावा भी इश्यूज है, जैसे मान लीजिए कि पहले, चलो अभी तो लॉकडाउन हो गया सब कुछ हो गया, उसके पहले जैसे इश्यूज थे कि जो लाइक स्टूडेंट वीजा पे आते थे, जो सब कुछ काम करते थे, उनको बेनिफिट बाद में जाके मिलता था, पर जो जैसे बोर्ड पे आते थे, जिस पे भी आते थे, उनको बेनिफिट पहले मिलता था। आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 2019। तो अभी जो कुछ पार्टीज है वो वही चीजें दोबारा दोहराना चाहती है बिफोर 2019 से। कुछ पार्टीज है वो कहती है कि हम जाएंगे कि फेयर बेसिस पे जाएंगे। तो जो मुझे लगता है वो बेसिकली वो चीज है कि इसी फेयर बेसिस पे जाना चाहिए, रेदर देन कि कुछ को बेनिफिट देने के लिए अपनी पार्टी को बेनिफिट देने की बजाय।
वैसे वोट देते समय पार्टी पर ध्यान है या अपने निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार पर, तो मोहित जी का कहना है,
बेसिकली मैं अनिता जी दोनों चीजों को देख के दूंगा कि जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र से है कि वो एटलीस्ट अपने क्षेत्र का क्या करेगा, ठीक है। और सेकेंड मैं वो देखूंगा कि कौन सी पार्टी है कि वो पार्टी जो मुझे जो मेरे मुद्दे हैं उसको रिलेटेड एड्रेस कर रही है, तो मैं उसको देख के दूंगा। क्योंकि आपको तो पता ही हमारे वोट से ही ऑस्ट्रेलिया का ये फ्यूचर बनाएंगे, तो ये मैं सोच के दूंगा।
और सबको अच्छी तरह से परख रहे हैं अपना महत्वपूर्ण वोट देने के लिए हमारे श्रोता जैक जी।
मैं दोनों को ध्यान में रख रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात की जानने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि कौन से कैंडिडेट की क्या भावनाएं हैं। मैंने ईमेल भी की है उनको, अपने विचार रखे हैं कि उनके विचार मैं जान सकूं। पहले मैं आज तक कभी भी इस तरह मैंने वोटिंग नहीं की है। आज ये पहला समय है जब मैं वोटिंग के लिए इतना कंसर्न हूँ, और मैं सभी अपने आस पड़ोस वाले सभी के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये किस मुद्दों को लेकर वोटिंग कर रहे हैं, क्या इनके लिए अहम है और क्या मेरे लिए अहम है। मैं अपने क्षेत्र के हरेक जितने कैंडिडेट्स हैं और जितनी पार्टीज हैं उनके मैनिफेस्टो पढ़ने की भी कोशिश कर रहा हूँ ऑनलाइन जाकर।
हमारी श्रोता अलका केसरी जी जो एक शिक्षिका हैं, उनका ध्यान शिक्षा के क्षेत्र में तो है ही, इसके साथ वो चाहती हैं कि समाज में नेतृत्व के सभी स्तरों पर बेहतर प्रदर्शन हो, जिसमें उम्मीदवारों की छवि और उनकी योग्यता मायने रखेगी।
तो मेरा बस यही कहना है कि जो भी गवर्नमेंट आए सभी को समान रूप से फंडिंग दे, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि सभी बच्चों को तकलीफ हुई है, शिक्षिकाओं को तकलीफ हुई है। और दूसरी बात ये है कि भाई गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए कि जिससे लोग अपने घर के पास से पास उनको नौकरी मिले, उससे बहुत से परेशानियां दूर हो जाएंगी। ना प्रदूषण खत्म होगा, पेट्रोल का जो इतना कीमत बढ़ रहा है तो कीमतों में थोड़ी लगाम आएगी। और ये भी है, मुझे लगता है कि कौन सी पार्टी के जो है ना, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर कुछ उसी समय के लिए अवकाश लेना पड़े तो उनको उनकी जगह कोई जो दूसरे आते उस समय के लिए ही तो अच्छी तरह शासन चला सके। ये मतलब उपनेता सब हैं, सब बहुत सशक्त हों, पूरा देश सही दिशा में आगे बढ़े। जो उम्मीदवार है उनकी छवि भी होनी अच्छी होनी चाहिए। जो नेता की छवि में ही कहीं कुछ त्रुटि हो तो धीरे धीरे वो समाज का एक स्वरूप बन जाता है, समाज की नैतिकता पे बहुत असर पड़ता है।
यानी वोटर्स अपना दायित्व निभाने के लिए तैयार हैं और वो आने वाली सरकार से कई नीतियों को, क्षेत्रों को लक्षित करने के लिए और राजनेताओं से जुड़ाव की अपेक्षा करते हुए सही कदम उठाने की ओर देख रहे हैं। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।